नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर मैं आपके आगे हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इस उम्मीद से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। ये बात मैं बहुत पहले की बता रही हूँ। एक बार की बात है, सूरज, किसान, हवा और पानी चारों मिलके आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत अगर लंबी चलती है तो हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे छलांग लगाते चले जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी हुआ। और वो टॉपिक पे इधर से उधर छलांग लगाते हुए टॉपिक आके रुक गया कि इस संसार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है, किसके बिना इस संसार का कार्यभार रुक जाएगा। अब जब ये बात चली तो धीरे धीरे बात बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि खूब बहस छिड़ गई। बहस इसलिए छिड़ गई कि सबने अपना गुणगान करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर राग शुरू हुआ। मैं इसे बकरी करती है ना, मैं। सूरज ने कहा कि अगर मैं ना निकलूं तो कोई जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। किसान ने कहा कि जीवन में बिना अनाज के कुछ नहीं होता, पेट भरना ज़रूरी है और अन्न तो मैं उगाता हूँ। हवा ने कहा कि एक पल अगर मैं ना मिलूँ तो कोई जीवन नहीं है। पानी ने कहा इस पृथ्वी पर मेरे बिना किसी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और इसी तरीके से मैं का राग अलापते हुए ये बहस बढ़ती गई, इतनी बढ़ी कि कोई नतीजा नहीं निकल सकता था। और बट ऑब्वियस था, नतीजा निकल भी नहीं सकता था। तो सबने तय कर लिया चारों ने कि कल से हम सब हड़ताल पे चले जाएंगे, तब हम देखते हैं कि किसके बिना दुनिया का काम रुकता है। अब ये बात जंगल में आग की तरह फैली है पूरी दुनिया में। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे दौड़ दौड़ के इन चारों के पास आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इन चारों के बीच में समझौता हो जाए और इस तरीके की विपदा टल जाए। क्योंकि सोच के देखिए कि अगर चारों बंद हो जाए तो क्या माहौल होगा। और उस कल्पना से सब कांप जा रहे थे, लेकिन न मेल होना था न मेल हुआ। जब नतीजा निकले तब तो मेल हो। सूरज ने दूसरे दिन सुबह हड़ताल कर दी तो सूरज नहीं निकला। पानी ने चारों तरफ से अपने आप को खींच के एक जगह सुखा लिया। हवा एक जगह जाके बंद हो गई, उसने चलना बंद कर दिया। और किसान भी हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। चारों तरफ हाहाकार समझ गया। सभी प्राणी मात्रा, पशु पक्षी सब ईश्वर से प्रे करना शुरू कर दिए कि इन चारों को बुद्धि आए। प्रकृति का नियम सबसे बड़ा होता है, वो नियम टूट रहा है, लेकिन चारों में से कोई टस से मस ना हुआ। अपनी बात पे सब डटे रहे। और कहते हैं ना कि घमंड की आग सबसे पहले खुद उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, उस चीज़ को नुकसान पहुंचाती है जिसको ये होती है। और कहावत ये भी है कि क्या मुर्गा बांग न दे तो सवेरा नहीं होगा। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। सब ईश्वर के चारों तरफ इकट्ठा होके बार बार प्रार्थना कर रहे थे, तो ईश्वर ने एक काम किया, चारों को उठा के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया कि अगर आप लोगों को हड़ताल ही करना है तो एक जगह बंद रहो। अब जब एक कमरे में सब बैठ गए तो पहले चारों चारों कोने में बैठ गए भाई चुपचाप कि जब फैसला हो जाएगा तो ही ईश्वर दरवाज़ा खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि फैसला हो तो बता देना। और सब जैसे तैसे ही सही अपने अपने काम पे लग गए। किसी का काम रुक तो सकता नहीं है, किसी की वजह से नहीं रुक सकता है। खाली बैठे तो थोड़ी ही देर में सूरज को उलझन होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी तपन बढ़ रही थी, और उस तपन से जो आग निकल रही थी उसकी वजह से वो छटपटाने लगा। उस ताप से वो खुद ही जलने लगा। उसको वो ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब उसने अपने आप को खोलकर थोड़ा सा हवा या कुछ लेने की कोशिश की, जिससे किरणें चारों ओर बिखर गई। किरणों के बिखरने से सूरज का ताप कुछ कम हुआ और उसका अभिमान भी गलने लगा। निकम्मे से बैठे होने के कारण हवा का भी दम घुटने लगा, तो वो भी चल पड़ी। इसी तरह पानी और किसान भी अपने अपने काम में लग गए। छोटा बड़ा जो भेद है ना, असल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सब काम सबके लिए नहीं होता, और जो काम जिसको सहजता है वो उसी चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी समान हैं, केवल प्रकृति की रचना ईश्वर ने ऐसी की है कि जिसके लिए जो काम है अगर वो उस काम को अपने दिल से करता रहे तो जीवन सुखमय हो जाएगा, खुशी के दिन बढ़ जाएंगे। और अगर उसने वो अपना काम ही नहीं किया तो कोई और किसी का भी जीवन अस्त व्यस्त हो या ना हो, जो अपने कार्य नहीं करता है उसका खुद का दम घुटने लगता है और उसको समझ नहीं आता कि मुझे पूरा दिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे उलझन क्यों हो रही है। तो इस कहानी से ये सीखने के लिए मिलता है, हम इंसान जिस कार्य के लिए बने हैं उसे हम अपने कर्मों के माया जाल में भूल जाते हैं। अगर हम अपने कार्यों में रोज अपने पिछले कल से आज को और आज से आने वाले कल को खुद में 1% भी कुछ नया कार्य करने में लगाएं और प्रकृति के नियमानुसार कार्य करें, तो हमें भी ईश्वर से वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा वो इस दुनिया को देना चाहता है। मेरी कहानी को आप लोग बहुत धीरज से बहुत प्यार से सुनते हैं, इसके लिए मैं अपने सारे श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर मैं नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरी कहानी में जो भी आपके सुझाव हों उसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे आपके सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहता है। एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।